ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 2010 की मुरलियां चल रही है। पिछले रविवार हमने 18 जनवरी 2010 की मुरली सुनी थी और बाबा ने विशेष उस दिन का महत्व बताया था कि आज स्मृति दिवस है, समर्थी दिवस है, स्नेह दिवस है और ताजपोशी का दिवस है। तो बहुत सुंदर मुरली थी वो और आज की मुरली है अनुभवी मूरत बनो। बाबा को कौन से शब्द पसंद नहीं है वो भी बाबा कई बार सुनाते हैं। कभी कभी शब्द बाबा को पसंद नहीं, थोड़ा थोड़ा शब्द भी बाबा को पसंद नहीं। कई ऐसी लिस्ट निकल सकती है बाबा को क्या पसंद नहीं है। तो आज बाबा ने कौन सा शब्द कहा होगा पसंद नहीं है? आज बाबा ने मेहनत शब्द कहा पसंद नहीं है। बच्चे और मेहनत करें तो सब सहज कैसे हो? चारों ही सब्जेक्ट्स में हम बहुत मेहनत करते हैं ना, लेकिन अगर हम उनमें अनुभवी स्वरूप बनते हैं तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा स्वरूप, सेवा स्वरूप, तो स्वरूप बनने से मेहनत नहीं लगती। अब हमें ज्ञान है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, लेकिन केवल ज्ञान है, वो अनुभूति नहीं है। तो अनुभूति नहीं होने के कारण क्या होगा? फिर कभी गुस्सा आ जाता है। परंतु अगर मैं उस शांत स्वरूप की स्थिति में अनुभवी मूर्त हूं तो गुस्सा नहीं आएगा। पर गुस्सा आता है, इसका मतलब उस ज्ञान के गुण, ज्ञान का जो पॉइंट है उसका स्वरूप नहीं बने। तो आज बाबा ने स्वरूप बनो इस पर बहुत जोर दिया है, तो अनुभवी मूर्त बनेंगे और उससे लाभ क्या होगा वो भी बाबा ने बताया। और अनुभवी स्वरूप नहीं बनते हैं तो क्या नुकसान होता है वो भी बाबा ने बताया। तो सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज 10/5/2026 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 30/1/2010 के, 30 जनवरी 2010। हेडिंग है चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। चारों ही सब्जेक्ट्स में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। अब इसका बहुत बड़ा डिटेल है जो बाबा ने मुरली में सुनाया है। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता कौन है? ब्राह्मण संसार का रचयिता बाप दादा। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। इंटरनेट का जमाना आ गया था और बाबा की मुरली देश विदेश में सब जगह बच्चे सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण संसार को, अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं और वो बच्चे भी बाबा को देख रहे हैं। हरेक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है, कोटों में कोई है, विशेष है, कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। कोटी खोटी आत्माएं हैं, उन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन हम बच्चों ने पहचान लिया उस बाप को साधारण तन में आए हुए। तो बाबा कहते हैं तो विशेष आत्मा सारे संसार में विशेष आत्मा हो, क्यों? कोटों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। मिल गया प्यार बाबा का, दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हरेक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं, करते हैं अनुभव। दिल बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। और आप सभी बच्चों का, एक मिनट, हरेक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। अब करते हैं ये प्रश्न है या वाक्य है, अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है। सर्व आत्माओं के प्रति कौन सा चैलेंज है? बाप के दिल में हम हैं, हमारे दिल में बाबा है, और हम बच्चों का सभी आत्माओं के प्रति चैलेंज है। क्या चैलेंज है? कि हम योगी जीवन वाले हैं, है ना, सभी योगी जीवन वाले। कोई भोगी जीवन वाला तो ब्राह्मण बच्चा नहीं होगा, सब योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन केवल दो चार घंटे का नहीं होता है, दो चार घंटे का जीवन होता है क्या? जीवन माना जीवन, जीवन दो चार घंटे का नहीं होता, जीवन सदा काल के लिए होता है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। चाहे योग में बैठते हैं, चाहे कोई भी कर्म करते हैं, कर्म योगी है। चाहे बैठे हैं, चाहे कर्म कर रहे हैं, जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। चाहे बैठे हैं, चाहे कर्म कर रहे हैं, तो भी सदा योगी। ऐसे अपना योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो, या केवल जब बैठे हैं तब योगी जीवन, और कर्म करते सब भूल गए कि हमारा योगी जीवन है? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। तो क्या देखते हैं उस चमकते हुए भाग्य में? क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। उस दिन भी बाबा की मुरली थी ना, स्वमानधारी सो सम्मानधारी। तो आज बाबा कहते हैं मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? क्यों बाबा कहते हैं मेरा हर बच्चा स्वमानधारी और स्वराज्य अधिकारी है? क्यों? जहाँ स्वमान है वहां देह भान आ नहीं सकता, या तो देह भान है या तो स्वमान है, या तो आत्मा का मान है या तो देह का अभिमान है। जहां स्वमान है वहां देह भान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हरेक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। कितनी लंबी लिस्ट है स्वमानों की, आदि से अंत तक। हाँ, हर मुरली में बाबा स्वमानों की लिस्ट देते हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। एक एक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाबा को ये लेकिन शब्द पसंद नहीं, लेकिन बाबा को भी कितनी बार ये शब्द कहना पड़ता है लेकिन। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती है। वो जानते हो कौन सी है? ये भी लिस्ट बन सकती है, कौन सी बात बाबा को अच्छी नहीं लगती। तो वो जानते हो कौन सी है? जब कोई भी बच्चा कहता है हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, तो बाबा कहते होली हंस हो, इतना बड़ा स्वमान है, तो होली हंस हो ये स्वमान है, लेकिन सचमुच में हंस की तरह सबके गुण उठाता हूँ, तो ये भी तो बाबा कहते ये स्वमान स्वरूप बनना होगा। तो बाबा कहते हैं जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते हैं। तो कौन सा शब्द बाबा को पसंद नहीं है? मेहनत। तो क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है, और जहां मोहब्बत है जहां मेहनत है वहां मोहब्बत की कमी है। क्यों नहीं उस स्वमान का स्वरूप बनते हैं? मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि बाबा कहते हैं मोहब्बत नहीं है। जहां मेहनत है वहां मोहब्बत की कमी है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया। बाबा को सारी दुनिया में चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? अब बाबा ने क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा का दिल तख्त नशीन हूँ। ये भी स्वमान है ना, मैं बाप दादा का दिल तख्त नशीन हूँ। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? अब स्वमान में स्थित रहने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कमी देखी बाबा ने? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन अनुभवी मूर्त बन अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। उस अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप में, हाँ बाबा कहते हैं, बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, अब ज्ञान के एक एक पॉइंट की कितनी अथॉरिटी है, इतना कितना बेधड़क होकर के ज्ञान की बातें सुनाते हैं, तो ज्ञान की पॉइंट्स में तो अथॉरिटी है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी तो अनुभव की अथॉरिटी है। जो ज्ञान सुनाते हैं उसका अनुभव स्वयं कितना किया है, तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है, और ये स्वमान की अनुभूति ऑल माइटी अथॉरिटी ने दी है। स्वमान की अथॉरिटी ऑल माइटी अथॉरिटी ने दी है, तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभवी स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। अगर उस स्वमान के अनुभवी स्वरूप होकर बैठते हैं तो कोई भी देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, हर बात में हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चार ही सब्जेक्ट्स में अनुभवी स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती है। अनुभवी जो होगा किसी बात में उसको माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखना चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है। सुन तो रहे हैं, पर बाबा कहते हैं सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा जिस स्वमान में स्थित रहना चाहो उसके अनुभवी अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाएं, अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता। जो अनुभवी होगा उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहभान, जहां स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देहभान आ नहीं सकता। या तो स्वमान या तो देहभान, दोनों साथ साथ नहीं होंगे। तो जहां स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देहभान आ नहीं सकता। जैसे देखो, हम मिसाल बाबा देते हैं, जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। स्विच ऑन किया, अंधकार खत्म। तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही जब स्वमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है तो किसी भी प्रकार का देह भान, भिन्न भिन्न प्रकार के देह भान भी है, देह भान एक प्रकार का नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार के देह भान भी है, और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने स्वमान भी दिए। देहभान भी भिन्न भिन्न प्रकार का और स्वमान भी भिन्न भिन्न बाबा ने दिए हैं। स्वमान को तो जानते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, एक है अनुभव का पुरुषार्थ करना और दूसरा है अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। बाबा को क्या अच्छा नहीं लगता कि अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य है ना, कितना ऊंचा लक्ष्य हमारा, बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो, अब समय समाप्त हो रहा है, संपन्न बन रहे हैं, संपूर्ण बन रहे हैं और अभी तक मेहनत कर रहे हैं, तो हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूँ। बाबा ने एक मुरली चलाई, कर्म और योग अलग नहीं है हमारा, कर्म से योग नहीं है, केवल कर्म से योग नहीं, कर्म में बाप से योग है, तो वो कर्म योगी जीवन है। तो हर एक अपने को चेक करो, मैं कर्म योगी जीवन वाला हूँ। जीवन तो नेचुरल और सदा काल की होती है, कभी कभी की तो नहीं होती है ना। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वो लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद को भी अनुभव हो, चमकती हुई लाइट यहाँ से निकल रही है, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, हाँ स्मृति आए इसके लिए सोचने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं कैसे पता चलेगा कि हम स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण है, क्या प्रमाण होगा कि मैं स्मृति स्वरूप हूँ या नहीं, कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप हैं, वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। स्मृति स्वरूप है तो हर कार्य करते समर्थी अनुभव होगी। कार्य तो भिन्न भिन्न होंगे लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं है, अनुभव स्वरूप की स्थिति तो एक ही है, कार्य अलग अलग है, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो, हाँ नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है, अनुभव स्वरूप बनने में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार देखा कि सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है, अनुभव करने में, अनुभव स्वरूप बनने में। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द भी यूज करना पड़ता है, इसका कारण है अगर कभी कभी ये शब्द भी यूज करना पड़ता है तो इसका कारण है कि अनुभवी स्वरूप बनने में कमी है, क्योंकि अनुभवी स्वरूप है तो कभी कभी शब्द नहीं कहेंगे। पुरुषार्थी हैं लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना पुरुषार्थी है, वो अनुभवी स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में चारों ही सब्जेक्ट्स में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, एक सेकंड में चारों ही सब्जेक्ट्स में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक भी आ न सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता है, हाँ वो सुपड़ा लेकर के अंधकार को निकालना नहीं पड़ता, नेचुरल जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी कम है या नहीं है, हाँ तो निकालना नहीं पड़ता है, नेचुरल जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है, अनुभव को हजारों लोग बदलना चाहे बदल नहीं सकते। अभी अनुभवी बन गए तो कितना भी कोई हजारों लोग हमारे अनुभव को कहेंगे ऐसे नहीं है नहीं है, पर हम बदल नहीं सकते। जैसे फिर और मिसाल बाबा देते हैं, जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है, मिठाई ना जैसे चखते हैं, जैसे जीभ पर रखा, अब ये नमक है या चीनी है पता नहीं चलता है, देखने से दोनों सफेद है, तो क्या करते हैं थोड़ा सा लेके जीभ पर रखते हैं, तो नमक है तो पता चलता है, चीनी है तो पता चलता है। तो जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वो मीठी होती है, अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहे बदल सकते हो? आपने चख लिया कि ये चीनी है, वो कहे नहीं नहीं ये नमक है, अरे भाई नहीं चीनी है मीठा है, तो बदल थोड़ी सकोगे। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी चारों में से एक में भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में, धारणा में, चारों सब्जेक्ट्स में, सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की, जहाँ मेहनत है किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत है, या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभवी मूर्त कभी कभी शब्द भी यूज नहीं करेगा। अनुभव कभी कभी नहीं होता है, नेचुरल नेचर होता है, वो स्वाभाविक होता है। कभी कभी भला वो स्वाभाविक थोड़ी हुआ, नेचुरल नेचर होती है। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या, क्या कारण है मेहनत करने का? नेचुरल रूप में वो अनुभवी मूर्त नहीं बने हैं। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है। तो बाबा ने उस पिछली बार भी ये तीन शब्द यूज किए थे, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, तो आज भी बाबा याद दिला रहे हैं। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी उस समय भी शायद बड़ा भूकंप आया होगा 2010 में, कुछ हुआ होगा, तो बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है, अभी नई नई बातें अचानक हो रही है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। 2010 में भूकंप कौन सा आया था, लाखों आत्माएं चली गई। क्या उनको पता था कि कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट, भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। रोज न्यूज सुनो, यहाँ एक्सीडेंट, वहाँ एक्सीडेंट, वहाँ एक्सीडेंट, कितने एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। भिन्न भिन्न स्थान पर ऐसे कई एक्सीडेंट, भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है, अनेकों की टिकट कट रही है, एक इकट्ठे 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 के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हो, ये तो नहीं कहेंगे। अब एवर रेडी जब बाबा पूछते हैं तो बच्चे ये तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना, इसको कहेंगे एवर रेडी। वो स्वमान या वरदान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा। अभी नहीं बन सके हैं, नहीं बने हैं, लेकिन बाबा कहते हैं पूछने की भी बात नहीं, अभी बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं, अगर कोशिश भी करनी है तो क्या करो। चलो कोई कहते कोशिश कर रहा हूं, तो कोशिश भी करनी है तो अभी से, ये नहीं कल से करूंगा, अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी भी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑल माइटी अथॉरिटी ने दी है। अनुभव की अथॉरिटी आपको किसने दी है? ऑल माइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देह भान के अनुभवी है, हर एक देह भान का अनुभवी है, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है? मैं फलाना हूं, ये देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं। मानो बाबा और मिसाल देते हैं, मानो आपका नाम देह पर पड़ा, अब जो भी आपका नाम है वो देह पर पड़ा, तो देह भान हो गया ना, वो देह भान है, वो नाम हमको पक्का है हमारा। मैं फलाना हूं, अगर हजारों लोग भी आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप वो नाम का नहीं हो, तो आप ये हो, दूसरा नाम बताया उसको कहे आप ये हो, नाम बदल करके कहो तो आप मानेंगे? हाँ, बदल करके वो कहे कि आपका ये नाम नहीं है। ये बाबा की जब मुरली सुनी थी तो मैंने एक बच्चे को ट्राई किया, उस बच्चे का नाम था कुछ नाम था, तो मैंने कहा नहीं ये आपका नाम नहीं है। कहता नहीं, यही मेरा नाम है। तो उसकी मम्मी ने भी कहा बच्चे बेटा ये तुम्हारा नाम नहीं, यही मेरा नाम है, यही मेरा नाम है। कितनों ने उसको बोला, स्वीकार ही ना करे कि ये मेरा नाम नहीं है। तो देखो नाम इतना पक्का हो जाता है। तो हजारों लोग भी आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप ये हो, नाम बदली करके कहे तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते जो नाम पड़ा वो देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, अब किसी और का नाम भी मेरे जैसा ही नाम हो तो उसको बुलाएंगे, तो कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, बुलाना उसको, ऊपर उसका भी वही नाम है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं, आपके नाम का दूसरा व्यक्ति भी उसी नाम का है। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, हाँ मेरे को बुला रहे हैं, है नहीं, आपको नहीं बुला रहे, पर नाम भले वही है पर दूसरे का भी वही नाम है। तो आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा कि मुझे बुला रहे हैं। तो देह भान इतना पक्का हो गया है, हाँ बाबा कई बार कहते ना, नींद भी हो और उस गहरी नींद में भी आपका कोई नाम पुकारे तुरंत आपकी आंख खुल जाएगी कि कोई मुझे बुला रहा है। तो बाबा कहते हैं देह भान इतना पक्का हो गया है, ऐसे अब जैसे वो पक्का हो गया है, ऐसे देही अभिमानी स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना, सब कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा जीवन परिवर्तन है, हमारा जीवन बदल गया है ये कहते हो ना, तो परिवर्तन क्या किया? मेरा जीवन बदल गया है ये अनुभव में सुनाते हैं, तो जीवन परिवर्तन क्या किया? परिवर्तन में तो परिवर्तन क्या किया? देह भान से स्वमान, ये परिवर्तन किया, जो देह भान था उससे स्वमान, स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला केवल बना हूं? केवल ज्ञान सुनने सुनाने वाला या ज्ञान स्वरूप बना हूं? ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। हाँ, नॉलेज का भी तो प्रैक्टिकल रूप है ना। नॉलेज को कहते हैं, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान रोशनी भी है और ज्ञान शक्ति भी है। तो नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला होगा। उसमें वो समझ से करेंगे, लाइट माना वो समझ और फिर शक्ति दोनों उसमें होगी, उस कर्म में यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ क्या है? अब योग स्वरूप, योग स्वरूप का अर्थ है कर्म इंद्रिय जीत बनना। मैं आत्मा हूं तो ऑटोमेटिकली कर्म इंद्रिय जीत बन गए। तो योग स्वरूप का अर्थ है कर्म इंद्रिय जीत बनना। हर कर्म इंद्रिय पर स्वराज्य धारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। योग युक्त, युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा भी ऑटोमेटिकली होगी। अब ज्ञान योग धारणा, तो हर गुण की धारणा भी ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय भी ऑटोमेटिकली होगी, समय अनुसार, चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। हाँ भी, संबंध संपर्क में कैसे सेवा होती है? मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा सा मायूस है वो कोई भाई या बहन, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। समय दिया उनको, थोड़े और संकल्प दिए पॉजिटिव, या थोड़ा उनको उमंग उत्साह दिलाया, स्नेह दिया, ये भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना ये पुण्य गाया जाता है। वैसे भी कोई अगर गिरा है तो एकदम आप झुक करके उसको उठाएंगे, ये भी एक पुण्य है। तो गिरे हुए को उठाना ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना ये सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, ये नहीं। अब सेवा मुझे मिली थोड़ी है तो मैं क्यों करूं? हाँ, सेवा मिले या सेवा दी जाए वो सेवा नहीं है। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है, कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वो नहीं है, ठीक नहीं है, उसका स्वभाव संस्कार जो होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन फिर अभी क्या होता उस समय, अभी उसका संस्कार ठीक नहीं है, हमने देखा, हमने सुना भी, अब क्या करना चाहिए। लेकिन ये तो है ही, फिर हम क्या कहते हैं, ये तो है ही ऐसा, कई बार कहते हैं ना, ये तो है ही ऐसा, कितना स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं है तो हमारे मुख से क्या निकल जाता, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, इसकी सेवा करना भी टाइम वेस्ट है, इसको कुछ समझाना भी वेस्ट है ना, कई बार ऐसे कहते हैं, तो इसकी सेवा करना भी टाइम वेस्ट है, ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है, कि ये इसको तो इसकी सेवा करना भी फालतू है, इसको कुछ समझाना भी फालतू है। तो बाबा कहते हैं ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है, जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को, और वो तो मनुष्य आत्माएं, प्रकृति को बदलने वाले बने हैं हम, ये हम दावा करते हैं, वो तो मनुष्य आत्माएं, ब्राह्मण कहलाता है लेकिन संस्कार वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वो तो प्रकृति से तो पुरुष है, प्रकृति का मालिक तो पुरुष है, तो वो तो पुरुष है, वो तो वो भी तो अथॉरिटी है, माना वो तो सहज बदल सकता है, प्रकृति से तो ज्यादा वो कर सकता है, तो वो तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है, तो सच्चा सेवाधारी अपनी सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा, क्योंकि सेवा का पुण्य कमाना है तो हरेक के प्रति शुभ भावना अवश्य रखेगा। ये तो है ही ऐसा, ये तो बदल ही नहीं सकता, ये शुभ भावना नहीं है, ये क्या है, ये तो है ही ऐसा, ये तो बदल ही नहीं सकता, ये सोचना ये शुभ भावना नहीं है, तो क्या है। तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म घृणा भावना है, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, अपना ही भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना, तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं है, उठाना है, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं, अनुभवी मूरत बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट्स में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी है उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई, बाबा देख रहा है, सब हाथ उठाओ, चारों सब्जेक्ट्स में अटेंशन देंगे, अनुभवी स्वरूप बनेंगे। मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा, अभी ये जनवरी एंड का है ना, 30 तारीख, तो फरवरी में तो फिर शिवरात्रि आती है, तो बाबा ने कहा मन का हाथ उठाओ, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे, उसके अंदर कमी का संस्कार है, पर हमारी शुभ भावना में हम कमी न लाएं, उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वो इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। हाँ, ना हमारी शुभ भावना को उसने कम कर लिया, क्योंकि इतना उसका संस्कार पक्का है। इसीलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, कैसी कैसी आत्माएं बाबा के सामने आई, कितने विघ्न डाले, क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना, शुभ कामना के तीन शब्द सभी को शिक्षा देके गए। कौन से तीन शब्द बाबा ने अंत में शिक्षा में दिए? निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी भव। तो याद है ना, तीन शब्द याद है ना, स्वयं भी निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, इसी स्थिति में अव्यक्त बने, किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। बाबा को सारा दिन चेस्ट पेन तो होगा ही, जरूर था, सवेरे से था तो सवेरे मुरली नहीं सुनाई। हाँ, दादी ने कहा आराम करो, तो बाबा ने कहा ठीक है, तो दिन भर था, लेकिन बाबा ने कैसे उसको कंट्रोल किया। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है, बाबा आज अव्यक्त होंगे, ये किसी को लगा? किसी को भी नहीं। क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? मेरे बच्चे। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे। तभी अंडरलाइन, भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे, ये राइट नहीं। परिवार है, कौन सा परिवार है ये? ये कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्म परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो। कैसा भी है, परमात्म परिवार है। जिसने माना कि प्रभु परिवार का हूँ, तो परिवार अर्थात प्यार, परिवार का मतलब ही प्यार होता है ना, परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। ये परमात्म परिवार एक का एक समय ही होता है। प्रभु का ये परमात्म परिवार एक का एक समय होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसका हो सकता है क्या? इतना बड़ा बेहद का परिवार है। तो चेक करना, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है, घृणा भावना कुछ भी, ये भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे, तभी अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, अब याद प्यार भी बहुत लंबा है। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते हैं। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर ये भी खुशी होती है, वाह मधुबन वाह, इतना बड़ा बेहद का परिवार मधुबन में है, तो वाह मधुबन वाह। सबका असलम तो मधुबनी है। बच्चे आकर के मधुबन में विश्राम करो बाबा कहते थे, तो असलम माना विश्राम का घर तो मधुबनी है, इसलिए मधुबन में भाग कर आ जाते हैं। अब बाप की जो आशा है वो भी जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। चारों ही सब्जेक्ट्स में अनुभवी स्वरूप बनना ही है, ये बाबा की आशा है। बाप दादा देश विदेश के और देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठ देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये साधन, ये साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। अभी तो कितनी प्रोग्रेस, इंटरनेट से क्या हो गया है, तो ये साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशंस दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रही है, आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। दूर होते भी साथ है, हजारों मील दूर बैठे इंटरनेट के माध्यम से बाबा को मधुबन में देखते और सुनते हैं, तो जैसे साथ है, दूर होते भी साथ है। तो साइलेंस वालों को भी मुबारक, तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो, और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए, लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। लाइट और माइट रूप बनने में मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति। धारण करो, फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वो उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं, तो हरेक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। देखो कैसा स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। यह व्यक्ति इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो के अंतर्गत आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो। कितना बड़ा टाइटल, आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो, खेल देखती और खेल में मजा लेती, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी से चारों सब्जेक्ट्स में अनुभवी मूर्त बनने का अभ्यास पक्का करें। चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।